धवला पुस्तक तेहरवी लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिसुवयजिनवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु अम्णमिं कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थ गन्थगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें स्पर्श अनुयोग द्वार हुआ, अभी कर्म अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है, और ये 13वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 पर हम आ गए। 91 देखो, यहाँ कर्म का अर्थ होता है क्रिया, और वो उसमें भी हमने देखे थे कि 10 अलग अलग प्रकार से उन्होंने उसके निक्षेप ने प्रकार बताए। कर्म पर निक्षेप, जिसे कर्म नाम रखना वो निक्षेप हो गया, कौन सा? नाम कर्म, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इस तरह हमने स्थापना, यानी वो अलग अलग हमने 10 भेद देखे थे, नाम स्थापना वगैरह वगैरह, यानी नाम स्थापना, द्रव्य प्रयोग वगैरह, समवदान, ये सब हमने अलग अलग डिफरेंस देखे थे। इतने सब देखने के बाद प्रश्न पूछा गया था कि हमारा प्रयोजन इस पुस्तक में किससे है, कौन से कर्म से, कौन से क्रिया से। कर्म यानी वो 8 कर्म की बात नहीं, यहाँ क्रिया को कर्म कहते हैं। तो ये फिर 90 पेज पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम पढ़ा था हमने कल, तो कहते इन कर्मों का किस कर्म से प्रयोजन है, यानी हमने आए 10 प्रकार बताए, तो उनमें से कौन सा हमारा विषय है ये पूछ रहे हैं। तो कहते समवदान कर्म से प्रयोजन है। समवदान हमने देखा था, जरा पीछे चलो, समवदान जहाँ हम 45 पर देखा था समवदान कर्म, पेज नंबर 45। हाँ देखो, वहां जो नीचे का पैराग्राफ, अभी वो व्युत्पत्ति छोड़ो, सेकंड लाइन नीचे से चौथी लाइन, जो यथा विधि विभाजित किया जाता है वह समवदान कहलाता है, यानी भेद करते डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। पेज नंबर 45 राइट साइड में होगा, 45 नीचे का पैराग्राफ, तो जो यथा, नीचे से चौथी लाइन, जो यथा विधि विभाजित किया जाता है वह समवदान कहलाता है, और समवदान ही समवदानता कहलाती है। अब यहाँ किसमें विभाजित, किसको करना है, तो कहते कार्मण पुद्गलों का, यानी हम कहते हैं वर्गणा, जो कार्मण वर्गणाओं का, मिथ्यात्व असंयम योग और कषाय के निमित्त से 8 कर्मरूप, 7 कर्मरूप या 6 कर्मरूप भेद करना समवदानता है। जब आयु का बंध होता है तब 8 कर्म बनते, मूल प्रकृतियों की बात है। आयु का बंध नहीं होता है तब वहाँ 7 कर्म बनते, और 10वें गुणस्थान में आयु भी नहीं और मोह भी बनता नहीं है तो वहाँ 6 कर्म बनते हैं। तो 8 प्रकार के, 7 प्रकार के और 6 प्रकार के कर्मों का समवदान रूप से अर्थात भेद रूप से ग्रहण होता है, अन्य प्रकार से नहीं। इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले सूत्रकार ने 9वां आदि कर्म नहीं यह प्ररूपित, यानी 8 ही कर्म है ये, इसमें से उन्होंने प्ररूपणा की है। जो कार्मण वर्गणा स्कंध, ये कार्मण वर्गणा की बात है, उसी पेज पर आगे के पेज नंबर 46 पर, सेकंड लाइन, जो कार्मण वर्गना स्कंद अकर्म रूप से स्थित है, तब जब कार्मण वर्गना रूप से वो तभी हमें उसको कर्म नहीं कहेंगे, कर्म रूप परिणमित होती, कार्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होती, पर वो अभी कैसे अकर्म रूप से है। वे मिथ्यात्व आदि कारणों का निमित्त पाकर, उपादान तो उसका अपना है कर्म का, कार्मण वर्गना का निमित्त या मिथ्यात्व आदि कारण, मिथ्यात्व आदि में किसको लेना है? हाँ वो देखा देखा पन बोलो ना।
मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय,
मिथ्यात्व अविरति प्रमाद को नहीं भी कहेंगे तो कषाय और योग कहेंगे, क्योंकि प्रमाद को कषाय में गर्भित, कहीं कहीं चार बताते कहीं पांच, बात एक ही है। तो आदि कारणों का निमित्त पाकर अन्य जीवों के परिणाम तो अन्य परिणाम को न प्राप्त होकर, यानी वो कर्म स्कंद वर्गना जो है वो अन्य कोई उसकी पर्याय नहीं होती, किस रूप से होते हैं? अनंतर समय में ही आठ कर्म रूप से, सात कर्म रूप से या छह कर्म रूप से परिणत होकर ग्रहित होते हैं। यानी हम कहते हैं जीव ने ग्रहण किया, उसी जो जीव के प्रदेशों में स्थित कुछ कर्मण वर्गणा कर्म रूप होते, पूरे की पूरी नहीं होती। यहाँ उक्त कथन का भावार्थ है। अब ये जो बंध उदय और सत्ता के भेद से अनेक प्रकार का कर्म समवदान कर्म है, क्योंकि उसमें भी हम बंध की अपेक्षा वो इसमें होते हैं, पर सत्ता में पड़े हुए भी उसके भी भेद कहेंगे और उदय में आते हुए भी भेद कह सकते हैं। इस तरह से समवदान क्या है वो हमने पहले देख लिया। अभी
यह जो क्रियारूप बात है वो कर्म की क्रियारूप बात है, नहीं परिणाम की। तो
देखो क्रिया में हमने देखा था षटकारक सभी लगेंगे, कर्ता को भी कर्म कहेंगे, कर्म जो कार्य हुआ उसको भी कहेंगे, उसके साधन को भी कहेंगे, ये पहले बात आ गई थी। तो जहाँ जिस अपेक्षा है वो तो बता रहे, तो जहाँ जो अपेक्षा है, अभी यहाँ क्या है समवदान में क्या लेना है, कर्मों का आठ सात या छह रूप में विभाजित होना। अभी 91 पेज पर आते हैं, यहाँ से अपना आज का विषय शुरू होता है, पेज नंबर 91। यहाँ इन छह कर्मों को आधार मानकर, कौन से? पहले जो हमने देखे थे प्रयोग कर्म, ने जीव के जो योग होते उसको प्रयोग कर्म कहा था, समवदान कर्म अभी हमने देखा था, अधक कर्म जो शरीर में जो मारना ताड़ना बंधन छेदन वगैरह होता है औदारिक शरीर को ही वहाँ अधक कर्म कहा था, इरियापथ कर्म 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में एक समय के लिए वो सातावेदनीय आता है उसको इरियापथ कर्म कहा था, तप कर्म में हमने बहुत वेरिएशन देखे थे 12 प्रकार के तपों की चर्चा की थी, और क्रिया कर्म भी हमने देख लिया था। अब इसमें से ये छह कर्मों को आधार मानकर उसमें क्या क्या देखेंगे हम, सत, सत कहना वो है, ये कथन करना वो होगी सत प्ररूपणा, द्रव्य कहने से उनकी संख्या बताना वो है द्रव्य, क्षेत्र ने वो उस सहित वो क्रिया वाले जीव कहो या जिसको हम कह रहे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कितने क्षेत्र में, पूरे लोक में या लोक के असंख्यात भाग में के संख्या, वो उसको कहेंगे क्षेत्र। स्पर्शन यानी वो क्षेत्र को ही बताना, पर वो क्षेत्र कैसे, अतीत काल की अपेक्षा, क्योंकि हम कहेंगे तो वर्तमान में जो मनुष्य है, वर्तमान में मनुष्य जो मरकर कहाँ कहीं चले जाएंगे, तो पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात है और अपर्याप्त भले असंख्यात है, पर एक समय में मैक्सिमम असंख्यात ही जीव मरकर कहीं कहीं जाए तो पूरा लोक नहीं हो पाएंगे, परंतु अगर वो मिथ्या दृष्टि मनुष्य अतीत काल की अपेक्षा पूरे लोक में मरकर सूक्ष्म जीवों में कहीं पर भी पैदा होता है तो पूरा लोक कहेंगे हम, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, स्पर्शन किसको कहना वो बात है। काल का अर्थ होते उस विशिष्ट क्रिया में, यह कर्मों की बात है उसमें रहने का काल, अधिक से अधिक उसको काल कहेंगे। अंतर का अर्थ होते वो छोड़कर अन्य में चला गया और वापस उसमें आ गया, जैसे मार्गणा का अंतर हम कहते हैं, गुणस्थानों का अंतर, उसमें भी एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा दो बातें लगती है, काल में भी और अंतर में भी। भाव और अल्पबोधत्व, इन जो अनुयोग द्वार है इसके द्वारा हम इन विषयों की चर्चा करने वाले हैं। कोई भी विषय हमको समझना है उसमें ये सभी बातें लगाते, तत्वार सूत्र में सूत्र है आपको शायद याद होगा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्पबोधत्व करके उसमें वो पहले बताया ना प्रमाण और नयन से वस्तु को जानना चाहिए, फिर ये जानने के ये तरीके बताए। दूसरा भी आता है ना निर्देश स्वामित्व वगैरह, ये दो सूत्र है वो यही बताते हैं कि किसी विषय को समझना है तो इतने एंगल से उनको समझना चाहिए, वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमको समझना चाहिए। अब यहाँ से यथा करके पढ़ते हैं। सत प्ररूपना की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश का अर्थ होता है कथन, और सत यानी वो है इतना कहना। जैसे हमें अगर गुणस्थानों पर ये सत संख्या वगैरह लगानी है तो सत कैसे लगाएंगे, पहले गुणस्थान वाले जीव होते बस, दूसरे वाले होते हैं, तीसरे वाले होते, यो होते हैं कहना, ये हो सत प्ररूपना। उसमें और चर्चा नहीं, वो उसमें पहले गुणस्थान वाले कितने हैं वो तो द्रव्य में आ जाते हैं। पहले गुणस्थान वाले कितने क्षेत्र में रहते तो पूरे लोक में, वो तो क्षेत्र में आ जाएंगे। इस तरह से सत प्ररूपणा की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। हमेशा ये कथन आपको मिलेगा, ओघ का अर्थ होता है इन जनरल सामान्य से, और आदेश का अर्थ होता है मार्गणाओं में, यानी गुणस्थान भी होता है, परंतु यहाँ केवल गुणस्थानों में, जैसे 14 गुणस्थान लेंगे तो सामान्य से सभी कवर होते हैं, चारों गतियां, यानी कोई विभाजन किए बिना जहां कहीं भी पॉसिबल है वो कहना, उसको कहेंगे ओघ से। यानी ऐसा भी हो सकता है वो एप्लीकेबल ओनली टू मनुष्य, तो भी ओघ में तो उसको हम कहेंगे, परंतु मार्गणाओं की बात जब आती है तो हम कौन सी अलग अलग गतियों में अलग अलग, अभी हमने जो ये 6 कर्म देखे कौन से, प्रयोग समवदान वगैरह वगैरह, तो ओघ से नहीं, इन जनरल ये होते हैं ये कहेंगे। और फिर मार्गणाओं में कहना है, आदेश से नहीं मार्गणाओं में, तो नरक वालों को कौन कौन से इसमें से हो गए, देवों के कौन से हो गए, मनुष्यों के कौन से हो गए, ये बात अब बताएंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग विषय है बहुत ये। देखो तो ओघ निर्देश, ओघ यानी इन जनरल कथन करना, आदेश निर्देश यानी वो विशिष्ट मार्गणाओं में कौन कौन से लागू होते हैं उसकी चर्चा करना। ओघ की अपेक्षा प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, ईर्या पथ कर्म, तपह कर्म और क्रिया कर्म, कर्म है बता दिया ना, तो हमारी सत प्ररूपना हो गई। अब आदेश की अपेक्षा अभी मार्गणाओं में बताएंगे, तो गति मार्गणा के अनुवाद से यानी गति मार्गणा की अपेक्षा, गतियों की अपेक्षा से नरक गति में नारकियों में। अब नारकियों में इनमें से कौन कौन से हो गए, जरा ऊपर हम नाम देखते हैं। प्रयोग कर्म यानी उनके तो योग हो गए कि नहीं, तो प्रयोग कर्म होगा। समवदान कर्म क्योंकि उनमें कौन कौन से हो गए, या तो 8 में या 7 में विभाजन होगा तो वो भी है उनके। अधक कर्म नहीं है क्योंकि औदारिक शरीर को अधक कर्म कहा था आपको याद होगा, तो वहां प्रश्न भी पूछा था। नारकियों में भी छेदन वेदन तो करते है, छेदन वेदन करते पर उनके जो घात यानी उसकी आयु नहीं खत्म होती उससे, जैसे मनुष्य तीर्यंचों में कदली घात से मरण भी होता है, ऐसे नारकियों में नहीं होता, औदारिक शरीर में वैसा उनमें नहीं होता, वो आयु पूरी पूरी वहां की आयु भी हाँ पूरी करके ही मरेंगे, भले वो जैसे शरीर के खंड खंड करते हैं सभी आता है, टुकड़े टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे पर वो पारे के समान फिर जुट जाएंगे, ऐसे उनके वैकृत शरीर है, इसलिए औदारिक शरीर को ही अधक कर्म कहेंगे। तो ये तो मनुष्य और तीर्यंचों में ही होगा, इसे नारकियों में है ही नहीं कह दिया। तो प्रयोग कर्म है, समवदान है, अभी आसान है डिराइव करना, और क्रिया कर्म होते हैं। हाँ देखो क्रिया कर्म देख ले, क्रिया कर्म हमने देखा था 88 पेज पर, 88 पेज पर। ये नमस्कार वगैरह होना ना, आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना वगैरह वगैरह, वो क्रिया करना पर हाँ परवश आत्माधीन, वहां समय दृष्टि है बस, हाँ आत्माधीन होकर करना है बस इतना ही। ईर्यापथ कर्म वो तो 11वें 12वें 13वें में होता है, वो तो नहीं होता है। तप कर्म नहीं होते, तप कर्म भी मुनियों के होता है, क्योंकि नारकियों के औदारिक शरीर का उदय किसके लिए, अधक कर्म के लिए, और 5 महाव्रत किसके लिए, तप कर्म के लिए, ये नहीं होते। अभी इसके आगे ये कौन से, ये 6 में हमको लगाना है, तो कौन सी मार्गणा में क्या हो सकते हैं हमको आसानी से हम सोच सकते हैं। इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए, क्योंकि जब गति मार्गणा की अपेक्षा नारकियों की बात करते हैं तो पहले इन जनरल सातों नरकों में मिलकर कथन करते हैं, फिर एक एक नरक में क्या एप्लीकेबल है उसका भी कथन करते हैं। तो सातों नरकों के बारे में यही ऐसा ही कथन होगा। सब प्रकार के देव, वैकृत शरीर का योगी और वैकृत मिश्र का योगी मार्गणाओं में नारकियों के समान भंग है। क्या कहना चाहते हैं? सभी देवों में भी क्या क्या हो गए? प्रयोग कर्म होगा, समवदान और क्रिया कर्म होंगे। वैकृत शरीर का योग में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इन्हें वैकृत का योगी कहना चाहिए। वैकृत शरीर का योग कहा, क्यों कहा, ऊपर क्या लिखा है? वेयु वे शरीर वेयु मिश्रेशु नारग भंगो। अच्छा ठीक है। वैकृत मिश्र अवस्था में भी क्या होगा?
ये क्रिया कर्म होगा वैकृत मिश्र में,
सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाले होगी ना। देखते वैकृत आप क्रिया क्रिया ने केवल शरीर की क्रिया मत सोचो वहां पर।
अच्छा,
देखो वैकृत मिश्र जो है तो वैकृत मिश्र में कितने कर्म बंधेंगे? सात कर्म, यानी समवदान तो कहेंगे उसको भी, प्रयोग और ये भी क्रिया कर्म भी बात। अभी आगे बढ़ते तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म अभी अधक कर्म होता है क्योंकि औदारिक शरीर वाले हैं, और क्रिया कर्म होते हैं। ईर्यापथ कर्म और तप कर्म नहीं होते क्योंकि तिर्यंचों के महाव्रत नहीं होते, यानी वो संयमियों को मुनियों के जो होते हैं उन्हीं को वो तप कर्म बताया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच, क्योंकि तिर्यंच गति कहने से उसके कौन कौन से भेद है? नहीं, तिर्यंच गति गति मार्गणा में तिर्यंचों के कितने भेद होते हैं लक्ष्मी आप बताएंगे? सामान्य तिर्यंच, हाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त योनिमित और लब्धि अपर्याप्त, पांच भेद होते हैं तिर्यंचों के, तो वही बता रहे हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के यानी लब्धि अपर्याप्तों के भी कहना चाहिए।
नहीं, अपर्याप्त को भी यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लब्धि पर्याप्त देखो में क्रिया कर्म होगा नहीं होगा?
निवृत्ति अपर्याप्त नाम का भेद है गति मार्गणा का
नहीं,
ये लब्धि ही होना चाहिए। उसमें डाला था हमने लास्ट टाइम भी लब्धि अपर्याप्त कौन थे, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त ये जो गति मार्गणा का पांचवा भेद है उसमें केवल लब्धि अपर्याप्तों को ही लिया जाता है।
लब्धि अपर्याप्त
नहीं, नहीं वो निवृत्ति अपर्याप्त कह रहे हैं।
नहीं लब्धि अपर्याप्त क्रिया कर्म होगा
अभी बताएंगे, अरे वो बताएंगे ना इतनी विशेषता है करके।
सॉरी थोड़ा आगे चला गया।
उन्होंने इशारा करके समझाया, उनके भाई उनको हमेशा स्टोरी बताते बच्चे थे तभी, ये हम जंगल में गए थे और इतना बड़ा तोता देखा, हाँ करके अरे मुझे जरा हाथ नीचे लाने दो। तो पहले में पहले लब्धि अपर्याप्तों की पहले तो उनमें क्या क्या होते बताए, अब जिनमें जो विशेषता है वो बताएंगे अभी आगे, लेकिन इतनी विशेषता है नवरी विशेष होता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के क्रिया कर्म नहीं होता क्योंकि उनमें समय दृष्टि जीव नहीं होते। यहाँ अगर हम निवृत्ति अपर्याप्त देखते तो निवृत्ति अपर्याप्तों में समय दृष्टि होते है कि नहीं होते? समूर्छन मत कहो,
समूर्छन नहीं,
समूर्छन में तो जन्म से मिथ्या दृष्टि होगी।
हाँ
कब? सम्यक्त्व के साथ तिर्यंचों में कौन जन्मते? मनीषा बेन कहेगी देव में से तिर्यंच समय दृष्टि नहीं जाता कोई तिर्यंच। इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया, हाँ क्षायिक समय दृष्टि जो जिस मनुष्य ने पहले तिर्यंच आयु बांधी बाद में सम्यक दृष्टि हुआ और बाद में उन्होंने क्षायिक प्राप्त किया तो भोग भूमि में जाएगा वो। संयुक्त के साथ। हाँ, तो उसकी बात नहीं, यहाँ लब्धि अपर्याप्तम की बात है। लब्धि अपर्याप्त तो कोई भी हो, मनुष्य हो, तिरंच हो, तो उनमें तो समय दृष्टि तो होते ही नहीं है, क्रिया कर्म को नहीं क्या। मनुष्य अपर्याप्त, अभी अन्य मार्गणाओं की बात करें। देखो यहाँ गति मार्गणाओं की अपेक्षा क्या क्या भेद होते, बस इतनी बात है। तो कौन कौन से अन्य मनुष्य अपर्याप्त, इन मनुष्यों का भी भेद है ना, उसमें भी सामान्य मनुष्य कहेंगे, मनुष्य पर्याप्त कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे और अपर्याप्त कहेंगे। तीनों में तो पांच भेद किए थे। हाँ, पंचेंद्रिय अपर्याप्त यानी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रियों में पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे भेद हो गए। त्रस अपर्याप्त, सब एक इंद्रिय, सब विकल इंद्रिय। देखो जहाँ समय दृष्टि नहीं उत्पन्न हो रही है बात, फिर भी औदारिक शरीर वाले है, ऐसे जिनमें ये कथन लागू होता है तिरंचो संबंधी पर्याप्त का, उसकी बात है। पांच स्थावर का है, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगियों के पंचेंद्रिय तिरंच अपर्याप्तकों के समान भंग है। तो प्रेरणा बिन आप कहो, इन सभी जो अभी हमने देखे उनमें कौन कौन से कर्म होगे, क्या नहीं होगे वो हम नहीं पूछ रहे, क्या क्या हो गए आपको बताना है। प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और नहीं अधक कर्म, अधक औदारिक शरीर है, क्रिया कर्म नहीं होगा, इन इन सभी में नहीं होगा। हाँ, त्रस यानी आप क्यों हो, अरे अरिहंत भगवान भी त्रस में आ गए। त्रस यानी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे ही त्रस है, यानी त्रस यानी द्विंद्रिय तिंद्रिय रेंगने वाले वो त्रस, ऐसा नहीं लेना। त्रस नाम कर्म का उदय वाले त्रस है वो। हाँ, त्रस में तो पंचेंद्रिय भी इंक्लूड है, संगी असंगी सब। त्रस कहने तो चौदहवें गुण स्थान तक के जीवों को लेना है। हम केवल त्रसों की बात करेंगे तो उसमें तो सभी कर्म आ जाएंगे, अर्थात इनके प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म होते हैं, शेष कर्म नहीं होते। ये तो तिर्यंच गति और उसके समान जो प्ररूपना है जी, उसके समान जो वो सब बता दे। अब मनुष्य गति की बात है, पहले नारकी देव बता दिए, तिर्यंच बताए मनुष्य। मनुष्य गति में, मनुष्यों में तथा मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में, यानी भाव स्त्री वेद वाले है ये, तो भाव से जो स्त्री वेद वाले हैं, द्रव्य से पुरुष वेद वाले हैं, वो तो चौदहवें गुण स्थान पार करके मोक्ष जा सकते हैं। तो कहते ओघ के समान कर्म होते हैं, यानी उसमें सभी कर्म है। कौन से चौ नाम बताओ,
प्रयोग कर्म,
प्रयोग कर्म,
समवदान कर्म, तप कर्म,
अध कर्म,
तप कर्म,
तप कर्म, क्रिया कर्म
और इरियापद
कर्म, सभी हो गए। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, क्योंकि पंचेंद्रिय में भी वो मनुष्य मुनि सब आ गए, इसलिए उनमें भी सभी हो गए। पंचेंद्रिय पर्याप्त, पर्याप्तों में तो हो गए। त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी। पांचों कब क्यों कहते, पांच कौन से मनोयोग होते हैं? हाँ तेजल, सत्य, असत्य, उभय अनुभय और पांचवा कौन सा, सामान्य। उनके सबसे बड़ा आपके लिए जो कुछ व्रत होगा ना, तो मौन व्रत है। वे लोग नहीं कर सकते। पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी। देखो औदारिक मिश्र काय योगियों को भी ये सब बताए। तो औदारिक मिश्र काय योगी में मनीष बेन आपको बताना है ये इरियापथ कर्म कैसे होगा। इसलिए हमने मनीष बेन को पूछा। फिर से सुनो, औदारिक मिश्र काय योग है तो उसमें इरियापथ कहाँ होता है, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें को। हाँ, तो ये औदारिक मिश्र कैसे होगा वहां पर, ये मेरा प्रश्न है। औदारिक मिश्र का योग कैसे होगा वहां पर, नहीं मालूम। प्रेरणा में हाँ, कौन सा न, आप बता। कपाट 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 समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग, प्रतर में प्रतर लोक पुराण कपाट समुद, दंड कपाट, हाँ पहला दंड है कार्मण का योगी। अब कार्मण का योगी में वो प्रतर लोक पुराण में वो घटित होगा, ईर्ष्यापद वाली बात, बाकी तो होते हैं। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, संयत, क्योंकि ये ऐसे लिए कि उसमें वो तप कर्म भी होते हैं, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सिद्धिक, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि। उपशम सम्यक दृष्टि में लक्ष्मी जी, ईर्ष्यापद कर्म कैसे होगा ग्यारहवें गुणस्थान में, द्वितीय उपशम के साथ गया हुआ। संगी और आहारक जीवों के कथन करना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई भेद नहीं है। यहाँ तक समझ में, इसमें कोई प्रश्न है, कोई मार्गणा, थोड़ा मार्गणा का अभ्यास होना चाहिए तो वो जल्दी पकड़ में आएगा कि कौन सा कर्म होता है, कौन सा क्यों नहीं होता। रोज आएगी आप तो बिल्कुल ख्याल में आ जाएगी। वैसे मार्गणा का करना नियोग परिचय पुस्तक आपने शायद पढ़ी हो, उसमें से मार्गणा का प्रकरण पढ़ लेना। देखो भी आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग ये किसके होते हैं, छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों के, जब वो आहारक शरीर बनाते हैं। तो कहते मिश्र का योगियों के अधिक समान कर्म होते हैं। अधिक शब्द नहीं चाहिए आपके, उसमें क्या वाचा रचना। अच्छा ऊपर देखो,
समान कर्म,
एक एक मिनट, ऊपर का वाक्य मुझे चाहिए। नवरी नहीं, नवरी के पहले पहले आहार आहार मिश्रण ओघ, अधिक समान है, ओघ समान, अधिक के बदले ओघ के समान कर्म होते हैं ना उनके सारे, वो कौन कौन से कर्म, हाँ अधिक निकालो और ओघ के लिखो। एक्सेप्ट क्या होगा वो बताएंगे। हाँ देखो, आहार कायोग आहार मिश्र कायोग ओघ के समान कर्म होते, किंतु इतनी विशेषता है कि उनके ईर्ष्यापद कर्म नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ पर होता है, क्योंकि वहां पर क्षीण कषाय और उपशांत कषाय अवस्थाओं का अभाव है। तेरहवें गुण स्थान का अभाव है तो कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ अन्य दो बताना चाहते हैं। इसी प्रकार तीन वेद, तीन वेद वाले यानी कौन से तीन वेद वाले, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो अभी तो ऊपर मनुष्यनी और मनुष्य पर्याप्त सबको लिया था, यानी वो तो उसमें भी, तो ये इसको ईर्ष्यापद क्यों नहीं लिया। हाँ वो अपगत वेदी हो गए। देखो मार्गणा कौन से, उसकी अपेक्षा कथन होगा, जीव वही का वही है। अब जो स्त्री वेदी जीव है, मनुष्य है, जिसको मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे तो उसके 14 गुण स्थान है, पर अगर स्त्री वेद वाला कहेंगे तो नौवे तक ही कहेंगे, नौवे के पहले भाग तक। ये जो अकलुष से वो फोन है ना, रेवती का, रेवती दोषी, वो धवला का मराठी करे ना, ये कुछ गड़बड़ लगती है। यहाँ तो नौ ही गुणस्थान है, यहाँ 14 गुणस्थान है, ऐसा कैसा लिया, दो जगह अलग अलग कथन कैसे है। तो फिर उनको सब समझाए कि इस तरह से उसका अर्थ होता है, क्योंकि मार्गणा कौन सी है उसके अनुसार उसका कथन होता है। जैसे जीव समास की अपेक्षा हम पूछेंगे, अरिहंतों का जीव समास कौन सा है, हाँ संगी पंचेंद्रिय। और अभी हम उनको पूछेंगे आपको, संगी मार्गणा की अपेक्षा अरिहंत भगवान संगी है कि असंगी है,
संगी असंगी से रहित है,
उनसे रहित है, क्योंकि संगी हम उनको कहते जो मन से जानते हैं। अरिहंत भगवान मन के द्वारा नहीं जान रहे, इसलिए 12वें गुणस्थान तक संगी कहेंगे और 13वें 14वें वालों को संगी असंगी से रहित कहेंगे। ख्याल में आते हैं? ये तो मार्गणाओं की विशेषता होती है, किस मार्गणा की अपेक्षा कैसे भेद करना है। तो यहाँ देखते हैं, तीन वेद वालों को इसी प्रकार का अर्थ क्या है, इनके इरियापद कर्म नहीं होगे, बाकी सब होगे। बाकी सब में किसको लेना? प्रयोग कर्म, समवदान, अधक कर्म,
तप कर्म,
क्रिया कर्म। यहाँ इरियापद को छोड़कर पांच लिए, और वो मार्गणा कौन कौन सी है? तीनों वेद वाले, चार कषाय वाले, क्योंकि कषाय भी नवे और लोभ दसवें तक है, इसलिए सब आ गए। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत, इनमें तो तप कर्म है परंतु नवे तक है, इनमें इरियापथ वाला नहीं है। परिहार विशुद्धि संयत छठा सातवां गुणस्थान है, बाकी तो तप कर्म वगैरह है परंतु उनमें इरियापथ नहीं है। पीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले, क्योंकि सातवें के ऊपर इनके ये लेशाएं नहीं होती है, तो शुक्ल लेशा वाले में हम सब कहेंगे परंतु पीत पद्म में नहीं कहेंगे। वेदक समय दृष्टि जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। ख्याल में आई ये बात? इन मार्गणाओं को सोचना, मन ही मन में ऐसा क्यों कहते, केवल हमने पढ़ने जाना है, इनके उसके समान कहा है। अभी हमने बहुत बार ये सब शास्त्र पढ़े हैं, ऐसी बातें लगाई है, इसलिए हमको फटाफट आता है, परंतु आपको समझना है, और नहीं समझे तो पूछना कि ऐसा क्यों कहा इसमें। सूक्ष्म सांप्राय संयत, ये संयतों का एक भेद है, यानी वो दसवें गुणस्थान में लागू होते हैं। और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, ये क्यों से 11 12 13 14 गुणस्थान में होते हैं। जीवों के ओघ के समान कर्म होते हैं, क्योंकि ये संयम मार्गणा की अपेक्षा भेद बताए है, परंतु उसमें भी विशेषता बताएंगे। इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता, क्योंकि इनका मन ध्यान में लगा रहता है, इसलिए वहां क्रिया कर्म का होना असंभव है। हमने कहा नमस्कार करना वगैरह, वो आपकी जो हमने जो क्रिया कर्म देखे थे, वो इसमें तो नहीं है। आप कहेंगे केवल दसवें को क्यों लिया, आठवें नौवें को क्यों छोड़ा, बोलो।
क्रिया कर्म नहीं होता है,
हाँ,
आठवें नौवें को क्यों छोड़ा?
हाँ, क्यों छोड़ा? वही तो मेरा प्रश्न है। नहीं तो है, वही तो कहे, यानी वो क्रिया है नहीं, जो नमस्कार करना, अवनति करना वगैरह, आत्माधीन है, आत्मा में लीन है, ऐसा उसका अर्थ नहीं। आत्माधीन है, स्वतंत्रता से करे, स्वाधीन को कहते। अरे स्वाधीन, स्वाधीन क्रिया कर रहे क्या कुछ
नहीं?
हाँ, जैसे हम नमस्कार, हम भगवान को नमस्कार करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, तो किसी ने जबरदस्ती की इसलिए करते हैं क्या? वो बच्चों को करेंगे हम, वो तो जबरदस्ती किया हमने, उनका माथा टेका।
तो इसीलिए क्रिया कर्म हमेशा परावलंबन से होती है।
क्रिया कर्म मुनियों के या समय दृष्टि के बताए, वहाँ पराधीन होती नहीं, अन्य क्रिया हो सकती है कि नहीं? क्रिया कर्म आत्माधीन है, ये कहना चाहते है। देख देखो, क्रिया कर्म इन्हें नमस्कार आदि, जो भगवान का नमस्कार वगैरह करने की, जो निकालो क्रिया कर्म, जो हमने उसके क्रिया कर्म के विशेषण देखे थे, क्या वो आत्माधीन होता है? और फिर उसमें वो नमस्कार, हाँ अभी मैं उसका उदाहरण, आठवां नौवां कोई मार्गणा नहीं है। हम मार्गणा के हम उल्टा सोचते हैं कि दसवें को लिया, आगे को लिया, इसको क्यों छोड़ा? देखो देखो, मार्गणा के भेद का है, गति मार्गणा, गति इंद्रिय काय वगैरह वगैरह। अभी हमने जो बाकी जो भेद देख रहे थे वो संयम मार्गणा के भेद है, परंतु आठवां और नौवां गुणस्थान है, सच कोई मार्गणा नहीं है। वो तो ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन वालों के उसमें आ जाएंगे वगैरह वगैरह, परंतु अलग अलग अपेक्षाओं से आएंगे। उनको गुणस्थानों की अपेक्षा अगर विभाजन होता तो हम आठवां गुणस्थान नौवां गुणस्थान एक एक गुणस्थान को अलग बताते, परंतु अगर मार्गणों के कथन में उनका अलग से कथन नहीं है।
क्रिया कर्म का थोड़ा देख लेते
हाँ हाँ नहीं इसीलिए प्रश्न पूछा।
और डॉक्टर सवाल पूछते ना तो वर्ड उलट जाते वो कंफ्यूज करने के लिए।
ऐसा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछती हूँ तो वही आत्माधीन है, स्वाधीनता से कर रहा है, यानी जबरदस्ती से कोई नहीं करा रहा है उनके, ये कहना चाहते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा से सोचेंगे तो एक दो तीन चार ऐसा गुणस्थान हम कहेंगे, आठवें नौवें में नहीं होगा, नहीं होगा, श्रेणी के गुणस्थान है ना वो तो। छठे सातवें में दोनों ही लिया है, परिहार विशुद्धियों को होता है, पद्मलेशावलम को होता है, इस तरह से। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे
तो निवृत्तियां पर्याप्त में भी क्रिया कर्म नहीं ले सकते हैं,
वहाँ सम्य दृष्टि है ना चौथे गुणस्थान
में, वहाँ पे क्रिया तो है नहीं।
अभी वैकृत मिश्र वालों में क्यों लिया फिर?
हाँ वही मैं मेरा क्वेश्चन था, वो मैंने पहले भी पूछा था आपको।
क्योंकि अभी उसमें आएगी शायद।
अच्छा अच्छा मन मत यहाँ पे बताया है, दर्शन ज्ञान आदि रूप होने वाला परिणाम दृष्टि संभव किया है।
कौन सा आप क्रिया कर्म देख रहे हैं? हाँ निकालो निकालो 43।
सद या जो सद्भाव क्रिया निष्पन्न है वह सब थोड़ी ये द्रव्य कर्म की बात है।
आप कौन सी ले रहे हैं? हाँ वो द्रव्य कर्म को पूछ रहे हैं आप। क्रिया कर्म तो हमने लास्ट में पढ़ा था 88 पर, भाव कर्म के पहले था ना। यहाँ जो क्रियाएं बताई है वो खास मुनियों की वगैरह बताई है, श्रावक की भी होती है।
इसीलिए मैंने पूछा था वैकृत मिश्र में क्रिया
परवश न होना, बस ये बात है।
तो क्रिया कर्म की व्याख्या क्या कर रहे हो?
ये उसके क्रियाकर्म छह प्रकार के हैं, आत्माधीन है बस ये, परवश न होना यानी क्रियाकर्म करते समय आत्माधीन होना, इस तरह से।
क्रियाकर्म करते समय आत्माधीन होना, इसीलिए मैंने पूछा था वैकल्पिक मिश्रण।
यहाँ मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा क्रियाएं बताई गई, पर यहाँ समय दृष्टि को क्रियाकर्म स्वीकार किया गया है, बस इतनी बात है। अब हम यहाँ अपने पेज नंबर 92 पर पढ़ेंगे। देखो सूक्ष्म सांबरा यथा क्या तो वाली बात हो गई, उसमें क्रियाकर्म नहीं होता ये भी देखा, साथ ही इतनी और विशेषता है कि नीचे से एक दो तीन चार पांच छह सात आठवीं लाइन सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के दसवां गुणस्थान है ना, इर्यापद कर्म भी नहीं होता। पहले दोनों को एक साथ रखा सूक्ष्म सांप्रा और यथाख्यात के, कि उनके क्रियाकर्म नहीं होता, और उसमें और विशेषता बताने के लिए कह रहे दसवें वाले को तो इर्यापद भी नहीं होता, क्योंकि कषाय सहित जीवों का इर्यापद कर्म नहीं हो सकता, वो ग्यारहवा बारहवा और तेरहवें में ही होता है, बस इतना ही। अपगत वेदी, अब ये मार्गणा उनकी अपेक्षा, वेद मार्गणा की अपेक्षा अपगत वेदी कब कहेंगे? जब वेदों का उदय मिट जाता है, नवे गुणस्थान के पहले भाग तक वेद का उदय है, बाद में उसको हम अपगत वेदी कहेंगे। अकषायी कौन से गुणस्थान से कहेंगे?
ग्यारहवें
बारहवें तेरहवें चौथे। केवल ज्ञानी 13-14 गुणस्थान, केवल दर्शनी जीवों के यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के समान कर्म होते हैं। यथाख्यात विहार में क्या देखा था हमने? उनमें क्रिया कर्म नहीं होता है ऐसा देखा था, और बाकी सब होते हैं ऐसा देखा था उन्होंने। संयता संयत जीवों के पांचवें गुणस्थान वाले के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधः कर्म और क्रिया कर्म होते, उसको तप कर्म नहीं लिया। इसी प्रकार असंयत, अन्य मार्गणा कौन सी, संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। देखो यानी उनमें भी समय दृष्टि है कि नहीं है, इसलिए परंतु तप कर्म नहीं स्वीकार किया, परंतु क्रिया कर्म स्वीकार किया है। अब कृष्ण नील कपोत में अकेले नारकी नहीं लेना, मनुष्य तीर्यंच भी है, इसीलिए अधक कर्म लिया औदारिक शरीर वालों के साथ। तथा इसी प्रकार अभव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता, यानी जहाँ सम्यक तो सहित जीव है उन्हीं को क्रिया कर्म स्वीकार किया गया है। बस हमें इतना समझना है क्या क्रिया करते हैं क्या नहीं, वो तो बहुत लंबा चौड़ा उनका जो विषय होगा। अनाहारक जीवों के ओघ के समान कर्म होते हैं, ओग में छह देखे थे। इस प्रकार सत प्ररूपना समाप्त हुई। अनाहारक जीवों के यानी कारमान का योगों के भी उन्होंने ओग के समान लिखा था। देखो निकालो ओग के समान जो हमने देखा था ना,
खाली एरिया पक्का सोच लिया।
एरिया पद क्या,
वो तो तेरवे में होगा ना,
एरिया पद भी होगा ना, मनुष्य में, मनुष्य के समान, तो उसमें कारमण का योगियों को भी ले लिया था। कारमण का योगी वैसे जो कारमण का योग में एप्लीकेबल होता है वही अनाहारक में हो जाता है, और वही औदारिक मिश्र भी बहुत जगह तो वो भी अप्लाई हो सकता है। तो इस प्रकार सत प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी सत प्ररूपणा में कौन से कर्म कहाँ होते हैं, ओघ में तो सभी होंगे और मार्गणाओं में अलग अलग बता दिए। अभी साधारण अंदाजा आया ना किसको क्या होते हैं, अब उसमें संख्या बताएंगे।
ये अनारक जीव में अधकर्म ले सकते
हैं, लिया है वहाँ, मुझे भी प्रश्न आया था कारमान का योग में अधक कर्म कैसा लिया है, परंतु मनुष्य तीर्यंचों के औदारिक काय वालों के होता है इस अपेक्षा से वहाँ पर भी स्वीकार किया होगा। अभी वहाँ बध बंधन वगैरह इस अपेक्षा से हम उसको नहीं सोच सकते, पर औदारिक शरीर धारण करने वाले हैं इसकी अपेक्षा से शायद उसको लिया है, क्योंकि दूसरा कौन सा हम उसमें ऐसे कोई बध बंधन वगैरह ये बातें तो उसमें नहीं लगा सकते। मुझे भी ये विकल्प तभी आया था जब हमने मनुष्य की बात पढ़ी थी कि कारमान का योग में अधक कर्म क्यों लगाते हैं, परंतु मनुष्य तीर्यंचा औदारिक शरीर वाले हैं और अभी उसमें वो उत्पन्न हो गए मनुष्य तीर्यंचों में, इस अपेक्षा से शायद लिया होगा। अभी आगे बढ़ेंगे 93 पेज। द्रव्य प्रमाणानुगम, देखो द्रव्य प्रमाणानुगम का अर्थ है संख्या, इसका कथन करते समय सर्वप्रथम द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अर्थ का कथन करते हैं। यथा प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है, नंबर ऑफ जीव को अलग अलग वो कर्म करने वाले उनको द्रव्यार्थता कहेंगे, और जीव प्रदेशों की प्रदेशार्थता संज्ञा है, जीव के प्रदेश जिसको हो उसकी संख्या को बताना है वो प्रदेशार्थता है, बताएंगे वो आगे। क्योंकि जब हम उसका कथन और पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। फिर से प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है, और जीव प्रदेशों की प्रदेशार्थता संज्ञा है, यानी नंबर ऑफ जीवों को द्रव्यार्थता कहेंगे और उनके प्रदेशों की बात करेंगे तो प्रदेशार्थता कहेंगे। समवदान कर्म और ईर्यापद कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है, और उन्हीं जीवों में स्थित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन कर्म परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। वहां कर्म परमाणुओं को प्रदेश कहा। देखो क्योंकि समवदान में हम क्या देखते हैं, आठ का बंध हुआ, आठ का बंध हुआ ने कर्मों का बंध हुआ, तो कितने कर्म प्रदेश, कितने कारमान ग्रहण किए परमाणु, तो अनंतों में होते हैं। तो उसको यानी कर्म परमाणु की संख्या को प्रदेशार्थता कहा। और पहले जो हमने देखा था जीवों की संख्या को द्रव्यार्थता और जीवों के प्रदेशों को प्रदेशार्थता, क्योंकि प्रयोग कर्म कहो, तप कर्म कहो या क्रिया कर्म कहो, वहां कर्म परमाणु से कोई मतलब ही नहीं उनसे, तो उसमें प्रदेशार्थता कहने से जीव के प्रदेशों की बात है। परंतु जहां इरियापथ कर्म और समवदान कर्म में क्या देखते हम, कर्मों की बात है, वो आठ कर्म, सात कर्म, छह कर्म, या वो इरियापथ में सातावेदनी बन रहा है, तो वहां कितने परमाणु बनते उसको प्रदेश कहा। अब अधकर्म में, अधकर्म में तो औदारिक शरीर को लिया था, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन औदारिक, औदारिक हुआ औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंधों की द्रव्यार्थता संज्ञा है। देखो अधकर्म किसको कहा, तो औदारिक शरीर को कहा। तो औदारिक शरीर के भी हर समय जो उसका समय प्रबद्ध ग्रहण होता है, तो उसमें भी शरीर संबंधी जो आहार वर्गना का ग्रहण होता है, तो वो भी कितना है, तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग। और उन्हीं औदारिक शरीर नौकर्म स्कंधों में, देखो ये पहले नौकर्म स्कंध कहा, उसको वर्गना कहा, और एक एक वर्गना में भी इतने इतने परमाणु होते हैं, स्थित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। यानी औदारिक शरीर जो आहार वर्गणा के जो स्कंद है, नंबर ऑफ आहार वर्गणाएं कितनी आती है, तो अभयों से अनंत गुणे, और एक एक वर्गणा में परमाणु कितने हैं, तो वो भी वो अभयों से अनंत गुणे वाला। यानी यहाँ द्रव्य किसको कहना, प्रदेश किसको कहना, ये इसकी अपेक्षा से बात की। जहाँ जीवों की बात है वो जीवों की संख्या को द्रव्य कहेंगे और उनके प्रदेशों को प्रदेशार्थता कहेंगे। अब इसी अर्थपद के अनुसार, अर्थपद यानी पहले उन्होंने ये नियम जाहिर किया किसको क्या कहना, इसके अनुसार द्रव्य प्रमाणानुगम का कर्थ्य करने पर यानी संख्या बताने पर निर्देश दो प्रकार का है, कथन दो प्रकार से होगा कि ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ में क्या देखा था हमने, वहां पूरी सभी जीवों के, सभी जो संसारी जीव है उनकी अपेक्षा से उसमें मार्गणाओं का भेद नहीं करेंगे, तो प्रयोग कर्म वाले कितने जीव है, तप कर्म वाले कितने हैं, अधक कर्म वाले कितने हैं, ये संख्या बताएंगे। तो अधक कर्म वाले, अधक कर्म कितने हो गए, इस तरह से देखना है, है न? और मनुष्यों में सामान्य मनुष्यों में असंख्यात कहेंगे, मनुष्य पर्याप्तों में संख्यात कहेंगे, इस तरह से आने वाला है। अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे। तो कहते कि ओग की अपेक्षा, अभी ये कर्म कहने से वो कर्म उसमें जो जीवों की वगैरह बातें लागू होती है, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्मों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता तथा इरियापथ कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है, तो कहते अनंत है। ये समझ में आती है ना, प्रयोग कर्म ने योग करने, योग कितने जीवों के होगा, हाँ नंबर ऑफ जीव, वो योग किसके होता है, तो जीवों के होगा। यथा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता रूप से अनंत वे भाग कम सब जीव राशि ग्रहण की गई है, यानी जीव राशि उसका अनंत वा भाग कम, इतना प्रयोग कर्म में लिया और समवदान कर्म में लिया,
अनंत बाबा कम सिद्धों की अपेक्षा लिया ना, अनंत बाबा कम किया तो सिद्धों की,
जीव राशि का अनंत बाबा कम किया, बरोबर, सिद्धों को कम कर लिया। इनकी प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि जो देखो देखो प्रयोग कर्म किसको होगा, योग किसके होगा,
संसारी जीव
तेरहवें गुणस्थान तक, चौदहवें वाले को नहीं लेना,
चौदहवें को और सिद्धों को,
और सिद्धों को नहीं लेना, वो सब सिद्ध भगवान और चौदहवें कितने हैं, तो अनंत बहुभाग है ना, पूरा जीव राशि का अनंत बहुभाग है, उसको कम करो तो बाकी अनंत बहुभाग जो है वो प्रयोग कर्म वाले है। और समवदान में भी ऐसा ही लेना है, यानी जिनके कर्म का ग्रहण ही नहीं है ऐसे कौन है, अयोगी और सिद्ध भगवान। समझ में आई बात?
यहाँ पे ये तो बताया ना इनकी प्रदेशता भी अनंत है।
फिर से पहली द्रव्यार्थता देखते हैं, क्या देखा हमने? प्रयोग कर्म तो समझ में आया, समवदान कर्म भी समझ में आया, और अधक कर्मों की भी देखा, तो अधक कर्मों की भी द्रव्यार्थता कितनी, तो अनंत है। तो अधक कर्म जब कहेंगे तो वैकिरिक शरीर वालों को कम करना पड़ेगा, तो वैकिरिक शरीर वाले और बिना शरीर वाले सब मिलकर भी कितने हो गए, अनंत भले हो जावे, अकेले वैकिरिक शरीर वाले असंख्यात है, सिद्ध भगवान अनंत है, पर वो सब मिलकर भी जीव राशि का अनंत भाग है, वो कम करके बाकी जीवों को लेना, यानी मनुष्य तिरियंचों की संख्या कितनी अनंत बहुभाग है उसको ले लेना। ये तो द्रव्यार्थिकता हो गई। तो कहते अनंत है, यथा प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता रूप से अनंत वे भाग कम सब जीव राशि ग्रहण की गई है। इसका अर्थ समझ में आई बात? इनकी प्रदेशार्थता भी अनंत है।
ये प्रदेश तो हम लोग एक जीव की अपेक्षा लेते हैं ना,
एक जीव के कितने प्रदेश है, लोक प्रमाण प्रदेश है, तो अनंत जीवों के कितने हो गए, अनंत लोक हो गए।
अच्छा, सभी का नहीं,
ख्याल में आती बात? प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि इन जीवों का घनलोक से गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? प्रयोग कर्म के लिए, और इन्हीं जीवों को उनके कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर, नंबर ऑफ परमाणुओं से गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। यानी समवदान करने वाले जीव और वो प्रयोग वाले जीव, उनकी संख्या करीबन समान ली है, परंतु एक जगह प्रदेशार्थता को जीव के प्रदेश है, एक जीव के घन लोक प्रमाण
और कर्म की प्रदेश,
और प्रदेशार्थ में एक जीव के अनंत कर्म परमाणु, तो इतने जीवों की कितने हो गए, इस तरह से उसको अनंत उत्तर दोनों का अनंत आ जाता है। अब इरियापत कर्म की प्रदेशार्थता भी अनंत ही है,
कर्मों के नंबर ऑफ परमाणु,
यहाँ इरियापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत बताई, उसमें द्रव्यार्थता नहीं ली थी, तो अकेली प्रदेशार्थता ली, क्योंकि इसके द्वारा सकल वितराग जीवों के कर्म प्रदेशों का ग्रहण किया गया। सकल वितरागी यानी 11वें 12वें और 13वें पूर्ण वितरागी, जिनको इरियापत होता है उनके लिए। अब वहाँ कितना होता है, तो पूरा एक समय प्रबद्ध कितना है, अभिहन से अनंत गुणा सिद्धों के अनंत विभाग, इतनी वर्गणाएं और एक एक में इतने इतने प्रदेश, तो वो अनंत होते। अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है। पहले प्रयोग समवादान अधक कर्म और बताए थे उनकी अनंतता थे, तो क्योंकि इसके द्वारा औदारिक शरीर के अनंत नौकर्म स्कंधों का ग्रहण किया गया है। अब यहाँ औदारिक शरीर वाले जीवों को नहीं लिया, यहाँ द्रव्यार्थता में नौकर्म स्कंधों को यानी वर्गणाओं को ग्रहण किया है, परमाणुओं को नहीं। परमाणुओं को प्रदेशार्थता में लेंगे। फिर से नौकर्म स्कंध ने वो आहार वर्गणा के स्कंध लेना, यानी नंबर ऑफ आहार वर्गणा एक समय में कितनी ग्रहण करता है जीव, एक समय में आहार वर्गणाएं कितनी ग्रहण होती है, तो अनंत, उसको द्रव्यार्थता कहा। और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु, उसको प्रदेशार्थता कहे। और इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि एक एक 94 पेज पर आना भी, एक एक नौकर्म स्कंध में अनंत परमाणु पाए जाते हैं। हमने देखा है, तो ये जीव शरीर के परमाणु भी ग्रहण करता है एक समय प्रबद्ध प्रमाण, और उसमें भी अनंत आहार वर्गणा है, और एक एक वर्गणा तो स्कंध है, एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। अब आगे इरियापथ कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता कितनी है, तो कहते संख्या है, क्योंकि तप करने वाले कौन है, तो संयत है
मनुष्य,
वो तो कितने हो गए, संख्यात हो गए, क्योंकि महाव्रतधारी जीव मनुष्य पर्याप्तकों को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते, और उनकी संख्या मैक्सिमम तो करोड़ों में होगी, जो छठे सातवें की जो संख्या बताई जाती है। तप कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात है, प्रदेशार्थता ली, पहले द्रव्यार्थता बताई, द्रव्यार्थता तो संख्यात है और प्रदेशार्थता असंख्यात है, क्यों, क्योंकि एक जीव के लिए एक लोक, तो संख्यात जीवों के लिए संख्यात लोक, यानी वो असंख्यात ही संख्या होती है ना, क्योंकि संख्यात महाव्रतधारियों को घनलोक के द्वारा गुणित करने पर संख्यात घनलोक उत्पन्न होते, एक लोक यानी वो असंख्यात है, और संख्यात इंटू असंख्यात भी असंख्यात ही हो जाएगा। मनीषा ख्याल में आ रही बात, थोड़ी थोड़ी सुनते जाना, तो हाँ, क्योंकि उनकी अपेक्षा एक बार ख्याल में आई ना, कहा द्रव्यार्थता किसको कहना और प्रदेशार्थता किसको, तो नहीं समझे तो पूछना फिर दोबारा। देखो तप कर्म किसको होता है, संयमियों को होता है, वो कितने हैं तो संख्यात है, प्रदेश कितने, एक जीव के लिए एक लोक, तो संख्या मान लेते ना, संख्यात के बदले अब सौ मानो, तो सौ लोक हो गए, तो उसका अर्थ कितना असंख्यात ही होगा, अनंत नहीं होगा। अब क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात है, देखो सभी सम्य दृष्टियों को यहाँ क्रिया कर्म में ले लिया है, क्योंकि पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र सम्यक दृष्टियों में ही क्रिया कर्म पाया जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर आया, और इसकी प्रदेशार्थता भी असंख्यात है, क्यों, क्योंकि कितने जीव है समय दृष्टि पल्ले का असंख्यात बाबा, और एक जीव के प्रदेश कितने,
लोक,
एक लोक, तो असंख्यात लोक हो जाएंगे, असंख्यात लोक यानी कितने हो गए, असंख्यात, पर वो असंख्यात कितना होता है, लोक प्रमाण असंख्यात होता है ना, इसलिए घन लोक, एक जीव के लोक घन लोक प्रमाण प्रदेश, तो इतने जीवों के कितने हो गए, हमें एग्जैक्ट वो असंख्यात का प्रमाण मालूम है, इसलिए लोक कह दिया। देखो क्योंकि पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र सम्यक दृष्टि द्वारा राशि द्वारा घन लोक के गुणित करने पर असंख्यात लोकों की उत्पत्ति होती है। ये समझ में आ रही बात, क्रिया कर्म सभी सम्यक दृष्टियों की संख्या कितनी है, चारों गतियों की मिलकर पल्ले के असंख्यात वे भाग। इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी में सम्यक दृष्टि कितने हो गए, केवल मनुष्य में आएंगे, फिर भी हो गए संख्या थे, क्योंकि तीन इंच में जाने वाले कौन हो गए, शायद सम्यक दृष्टि वहां जाने वाले हो, वो भी संख्यात हो गए, एट ए टाइम जाने वाले दो चार पांच हो गए, और कितने हो गए, समझ में आते ना, फिर से पहले सबके साथ लिया है, बाद में जो विशेषता बताएंगे क्या कहते हैं, इसी प्रकार ही अभी हमने जो देखे थे, ओ की अपेक्षा जो देखा है ना हमने, ओ की अपेक्षा क्या क्या देखते आए हम, कौन से कितने होते हैं, यही बात किसमें इसमें एप्लीकेबल होगी, तो कहते काय योगियों में, औदारिक काय योगियों में, औदारिक मिश्र काय योगियों में, कारमाण काय योगी, अचक्षु दर्शनी, भव्य सिद्धि, क्योंकि वो अनंत का असंख्यात का सब एप्लीकेबल होना चाहिए, आहारक और अनाहारक जीवों का कथन करना चाहिए, अभी इसमें से किसको छोड़ा, इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्र काय योगियों में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। इसका अर्थ समझ में आया,
तो कारवां में देव और नारकी को भी लिया तो सम्यक तो कितना चार है,
असंख्यात हो गए उसमें, इसलिए वैकरिक मिश्र में भी असंख्यात हो गए, क्योंकि एट ए टाइम तीर्यंचों में असंख्यात समय दृष्टि मरकर देव में जा सकते हैं एट ए टाइम। अभी ये तो ओघ में बता दिया, अब एक एक मार्गणाओं में देखें। नरक गति में हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन से कर्म होते, जरा फिर याद है।
प्रयोग
कर्म होगा, समवदान होगा, क्रिया कर्म होगा ना, क्योंकि सम्य दृष्टि होते हैं, इतने होगे, दूसरा कोई नहीं।
हाँ
देखो अभी नरक नारकी होते असंख्यात, यहाँ तो आनंद वाली तो बात नहीं होगी। हाँ वो प्रदेशों की अपेक्षा या कहीं वो समवदान में प्रदेश हो गया अनंत, उसकी बात हम देखते हैं। नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कितनी है, तो कहते असंख्यात है। इतनी विशेषता है, विशेष ना हुआ विशेषता है कि समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है। देखो क्यों, क्योंकि समवदान कर्म में उसकी द्रव्यार्थता क्या है,
प्रकर्ता
जीव हो गए ना। हाँ वो करने वाले जीव कितने होंगे, तो असंख्यात हो गए, परंतु उसमें वो कितना परमाणु को ग्रहण करे, हाँ वो अनंत होगा। फिर से देखो, समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण राशि द्वारा, यानी नारकी कितने हैं समवदान करने वाले, तो प्रतर के असंख्यात वे भाग, यानी असंख्यात है राशि, ये राशि किसकी है, नारकियों की। अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। ये समझ में आई बात इसकी, समवदान में द्रव्यार्थता कैसे लेना जीवों की संख्या, और प्रदेशार्थता कैसे लेना नंबर ऑफ परमाणु।
ये नारकी जीव जगत प्रतर के असंख्यात में भाग लिए,
हाँ जगत प्रतर का असंख्यात भाग, बोलो।
अच्छा मेरा एक श्रेणी का असंख्यात, मैं इसे सूचना श्रेणी का असंख्यात, क्योंकि मुख्यतः हम लोग ज्योतिषी के अपेक्षा लेते हैं।
नारकी की बात चल रही
है, नहीं त्रस जीव हम लोग देखते हैं,
साधिक त्रस देवराशि होती है।
अच्छा ये भी
तो यहाँ वो त्रस को यहाँ क्यों याद किया, वहाँ भी प्रतर का संख्यात्व भाग हो जाता है। जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरावली डिवाइडेड बाय असंख्यात, ऐसा कुछ होता है। प्रतरांगुल होता है, वो बात यहाँ मत याद करो, यहाँ तो नारकी कितने हैं ये बात है। हाँ देखो आगे देखो, इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में कथन करना चाहिए, दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इस इतनी विशेषता है कि इन पृथ्वियों में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से घनलोक को गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता होती है, यानी वहाँ की जो संख्या है वो अल्प है, श्रेणी का असंख्यात भाग। हमने तो देखा था कि पहले नरक में तो श्रेणी को उसका विषकंभ से गुणित करते हैं, इतने जीव थे असंख्या जगत श्रेणी और बाकी श्रेणी के असंख्या तो भाग। हमने देखा श्रेणी डिवाइडेड बाय उसका अमुक कितना भी वर्गमूल उसके देखा। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर प्रयोग पेज नंबर 95 प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र पाई जाती है, यानी दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें में अपने अपने जो नारकियों की संख्या श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। अकेले पहले में असंख्यात जगत श्रेणी कहो या प्रतर का असंख्यात भाग को एक ही बात है। और अभी समय दृष्टि नारकी कितने हो गए उसकी बात है। पल्लोपम के असंख्यात भाग से घनलोक के गुणित करने पर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि ये समय दृष्टि नारकियों की संख्या है, क्योंकि वहां पर क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र पाई जाती है। देखो यहाँ जो हम किसकी अपेक्षा बात करें, इसलिए वो क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता कहने, हमें समझना है सम्य दृष्टि नारक, इनकी संख्या कितनी है। ये शब्द बदलने से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम क्या देख रहे हैं, वो जीवों की संख्या देख रहे हैं, क्रिया कर्म कौन से नारकियों को होगा, सम्य दृष्टि नारकियों को, वो कितने हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग। और जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग से मध्यम प्रमाण रूप से ग्रहण किए गए एक जीव के कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता होती है। क्या कहना चाहते हैं, समवदान सभी जीवों के होगा, नारकियों के, समय दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, तो वो कितने हैं, श्रेणी के असंख्यात विभाग है। और हर एक जीव कितना समय प्रबद्ध ग्रहण करता है कहो, तो कहते कि हाँ, तो कहते कि श्रेणी के असंख्यात विभाग से, यानी वो जीवों की संख्या, मध्यम प्रमाण रूप से ग्रहण किए गए एक जीव के कर्म प्रदेश, यानी वो भी अनंतों में होते हैं, समय प्रबद्ध में, एक समय प्रबद्ध में कर्म प्रदेश कितने, अनंत है। और वो एवरेज निकाला उन्होंने, एक जीव के लिए इतना है तो सभी जीवों के लिए कितना है, उसके लिए मध्यम प्रमाण रूप से ग्रहण किए गए, क्योंकि वो समय प्रबद्ध मिनिमम भी हो सकता है, योग जहां ज्यादा है मैक्सिमम भी होगा, तो उसका एवरेज निकालना, इसको कहेंगे मध्यम, यानी एवरेज समय प्रबद्ध लेना, वहां गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि वहां पर समवदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र पाई जाती है। समझ में आई बात। प्रक्षेपक संक्षेपण, इस सूत्र द्वारा यहाँ पर समीकरण कर लेना चाहिए, समीकरण यानी इक्वलाइज कर देते हैं, हमको समान रूप से करते हैं, यानी हम उसको जो एवरेज निकाल के बात यहाँ पर है, यानी समवदान कर्मों में भी जीवों को द्रव्यार्थता कहना और कर्म परमाणुओं को प्रदेशार्थता कहना। अब हमने नरक गति में देखा, अब क्रम से तिर्यंच गति में, कहीं पर भी कथन आता है ना गतियों का, पहले नरक फिर तिर्यंच फिर देव और नरक तिर्यंच मनुष्य और देव, समानता अगर होगी तो नारकी के समान देवों को समझना, ये कहते हैं। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में वो चो के ऊपर एक रफा रहा है वो निकालो, ओग के समान द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि ओग में भी अनंत जो प्रमाण है और तिर्यंचों में अनंत प्रमाण है, कुछ यहाँ नहीं होगा, जैसे हमने तिर्यंचों में कौन कौन से होते हैं देखा था, प्रयोग कर्म होगा कि नहीं होगा, समवदान होगा कि नहीं होगा, अधक कर्म होगा कि नहीं होगा, तप कर्म नहीं, क्रियापथ नहीं होगा, क्रिया कर्म सम्यक दृष्टि होगी ना,
अधक कर्म
चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती है ना वहाँ पर। हाँ, तो देखो इतनी विशेषता है, यहाँ पर ईर्यापत कर्म और तप कर्म नहीं होते, हम थोड़े बारंबार उसको याद करने की कोशिश करेंगे ना तो याद में, हाँ इसीलिए ऐसा नहीं कि जिसको आता है वो फास्ट फास्ट नहीं बताए, सबको सोचने का थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। इन ये नहीं होते क्योंकि इन जीवों के महाव्रत का पाया जाना संभव नहीं है। अब ऐसा ही और किसमें घटित होगा, इसी प्रकार असंयत यानी असंयतों के भी इरियापत कर्म नहीं होगा, तप कर्म नहीं होगा, असंयत कहने से पहले चार गुणस्थान आ गए, तथा कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए, क्योंकि अशुभ लेशा भी चौथे गुणस्थान तक होती है, यानी उनमें भी क्रिया कर्म तो होगा परंतु इरियापत और वो तप कर्म नहीं होगा। अब तिर्यंच गति में बता दिया उन्होंने, यानी जो वहां कर्म होते हैं उनमें ओ के समान भंग है। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में, अब पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहने से संख्या कितनी होगी पहले ये नक्की करो, असंख्यात होगी तो वहां वो अनंत वाली बात तो नहीं घटित होगी, कौन किसमें, जीवों के लिए, हाँ कर्म के लिए होगी उसकी बात नहीं। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म द्रव्यार्थता की अपेक्षा यानी जीवों की संख्या की अपेक्षा जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तीरियंच त्रिक कहने से पंचेंद्रिय तीरियंच योनि ने और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, ये उसके तीन भेद होते हैं। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, केवल लब्धि अपर्याप्त नहीं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी संख्या कितनी है? प्रतर का असंख्यात बाबा। प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, अब प्रयोग कर्म में प्रदेशार्थता ने एक जीव के घनलोक प्रमाण, तो इतने जीवों के कितने हैं? जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग मात्र घनलोक है, यानी घनलोक मल्टीप्लाइड बाय प्रतर का असंख्यात भाग, जिसको हम असंख्यात लोक कहेंगे। फिर से टोटल जीव कितने हैं? प्रयोग करने वाले, प्रयोग यानी योग वाले जो तीरियंच, टोटल तीरियंच लेना है इसमें, पंचेंद्रीय तीरियंच की बात चल रही है, तो प्रतर का असंख्यात भाग, और एक जीव के लिए एक घनलोक, तो इतने जीवों के लिए कितने? तो त्रैराशि के उसे उसे गुणा करना है। समवदान कर्म की प्रदेशार्थता, देखो जब प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता कहते तो जीवों के प्रदेश लेना, और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता में जीव लेना, और प्रदेशार्थता में कर्मों के प्रदेश लेना। अनंत है, क्योंकि एक जीव के लिए अनंत, तो इतने जीवों के असंख्यात जीवों के लिए उससे भी असंख्यात गुणा अनंत, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग से एक जीव के समीकरण द्वारा उत्पन्न हुए कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर, समीकरण कर्म द्वारा उत्पन्न यानी वो एवरेज निकालना, यानी किसी का योग ज्यादा है किसी का कम है, समीकरण किया है हमने, क्या किया? एवरेज निकाला, कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर, यानी कर्म प्रदेश फिर भी वो अनंत में हो गए, अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। यहाँ समझ में है इसका अर्थ? दक्षाबेन थोड़ा कठिन होगा समझने के लिए, आज पहला दिन है, परंतु ये दो चार दिन सुनते तो आप फटाफट समझ में आने लगेगी बात। भले आपको उत्तर नहीं भी देने को आएगा, परंतु वो आपको समझ में आता है कि नहीं, इसकी मुख्यता रखो अभी तो। अभी अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि अधक कर्म किसको कहेंगे? वो औदारिक शरीर वाले जीवों को कहा। वो कितने हैं?
ये पंचेंद्रिय।
नहीं नहीं नहीं, अधक कर्म में जीवों की बात नहीं लेना, औदारिक शरीर के वर्गणा लेना, वर्गणाओं के स्कंद लेना,
स्कंदों के।
द्रव्यार्थता में वर्गणाओं के स्कंद लेना, और प्रदेशार्थ में एक वर्गणा में परमाणु की संख्या लेना। ये दिया कल बताया था, कल ने 93 पेज निकालो। अधक कर्म की द्रव्यार्थता किसको लेना? देखो वो पहला पैराग्राफ बहुत महत्व का है, 93 पेज का। देखो नीचे से तीसरी लाइन, पहले पैराग्राफ पेज नंबर 93, अधक कर्म में द्रव्यार्थता किसको कहना? तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंद, यानी नौकर्म स्कंद भी अनंत है, और एक एक नौकर्म स्कंद में प्रदेश यानी परमाणु भी उससे अनंत है। आहार वर्गणा, नौकर्म वर्गण है ना, आहार वर्गणा, आहार वर्गणा के स्कंद कितने जीव ग्रहण? देखो अभी औदारिक शरीर हो, कार्मान शरीर हो, उसमें जो वर्गणा से जो वो शरीर बनता है, वो वर्गणाएं कितनी ग्रहण होती है? तो अनंत। और एक एक वर्गणा में परमाणु कितने हैं? तो वो भी अनंत। तो यहाँ द्रव्यार्थिक में तो अनंत जो बताया वो वर्गणा की बात है, अधक कर्म वाले जीव नहीं लेना यहाँ पर। अधक कर्म शरीर को ही कहा, शरीर के जो नौकर्म स्कंद है उसको द्रव्यार्थता कहा, और एक एक स्कंध में परमाणु, तो टोटल परमाणु कितने हो गए? एक स्कंध में इतने, तो अनंत स्कंधों में कितने हो गए? तो अनंत अनंत। फिर से देखो पेज नंबर 95 पर नीचे से छठी लाइन, अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है। अनंत किसको कहा? क्योंकि एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले, अच्छा ये निर्जीर्ण होने वालों के लिए, और निर्जरा के योग्य अनंत औदारिक नौकर्म वर्गणाओं का इसके द्वारा ग्रहण किया गया। निकलने वाली संख्या ली, जितना ग्रहण होता है उतने छूट। अरे यहाँ 95 पेज पर अपना विषय जहाँ चल रहा था ना, फिर से पढ़ती हूँ मैं नीचे से छठी लाइन। में किसको लिया था, निर्जरा वाले लिए थे, वर्गणा को लिया था। परंतु वहाँ पर भी ऐसे ही समझना, जितने ग्रहण होते करीबन उतना ही निर्जरित भी होते करीबन। एक समय प्रबद्ध जितना ग्रहण होता है उतना ही करीबन निकलता है, इसलिए उसको लिया यहाँ पर। देखो फिर से पढ़ू मैं नीचे से छठी लाइन। अधकर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले और निर्जरा के योग्य अनंत औदारिक नौकर्म वर्गणाओं का इसके द्वारा ग्रहण किया गया है।
ये निर्जरा ही होने वाले और योग्य, उसमें क्या फर्क बताए?
यानी जो निर्जरा होने वाले हैं,
जो पाचा निर्जर होने,
अब इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत होती है, क्योंकि अधक कर्म की द्रव्यार्थता द्वारा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र नौ कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ जो नौकर्म स्कंद है, जो कार्मा आहार वर्गणा के स्कंद को द्रव्यार्थता कहा, और एक एक में कितने परमाणु है तो टोटल में कितने हो गए, उसको प्रदेशार्थता, वो दोनों की संख्या अनंत कहेंगे। इनके इनके नहीं, तिरियन चौत्रिक की बात है। क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र है, और प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता किसको लेना, जीव के प्रदेशों को लेना पड़ेगा। टोटल जीव कितने हैं, पल्ले के असंख्यात वे भाग, इसको लोक से गुणा करना पड़ेगा। प्रदेशार्थता असंख्यात, असंख्यात शब्द यहाँ आया है और आगे की लाइन नेक्स्ट पेज पर पढ़ना है। असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात वे भाग से सम्यक दृष्टियों की संख्या घनलोक को गुणित करने पर यहाँ क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। यहाँ तक समझ में आई बात? इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के भी कथन करना चाहिए। अब विशेषता पढ़कर फिर सांस लेना। विशेषता क्या होगी, क्रिया कर्म नहीं होगी। इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता, जैसे लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों में देखा, ऐसा ही और कहाँ होगा जहाँ क्रिया कर्म नहीं है पर बाकी है। तो कहते इसी प्रकार द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी जनरल द्विंद्रिय लेंगे तो भी यही कथन होगा, अकेले पर्याप्त लोग तो भी यही कथन होगा, अकेले अपर्याप्त उनका कथन करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। पंचेंद्रिय अपर्याप्त, आप कहेंगे अभी तो बताए ना, वो तिर्यंच पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त बताया था, अब यहाँ केवल पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, यानी उसमें मनुष्य भी आ गए
सभी,
पर इसी प्रकार कह रहे हैं ना, अन्य मार्गणाओं का भी कथन हो रहा है ना यहाँ पर। द्विंद्रिय या इंद्रिय मार्गणा है, तिर्यंच गति तो गति मार्गणा थी, अब जो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तों को में जो कथन किया था ऐसा ही कथन और कौन से मार्गणाओं में होगा, तो वो यही बता रहे, क्योंकि हर एक मार्गणा को सेम कथन नहीं करेंगे, जो इसके समान कथन है उन मार्गणाओं की लिस्ट यहाँ बता दी। कौन सी है वो, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय सबके पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्रियों के अपर्याप्त, अभी काय मार्गणा की अपेक्षा त्रस को भी लेना, त्रस अपर्याप्त, फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, उसको भी लिया, साधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है, अपनी अपनी प्रदेशार्थता का गुणकार जानना चाहिए, यानी उनकी संख्या हमको मालूम होनी चाहिए। मेरा प्रश्न है, अच्छा तीसरा गुण स्थान उसको सम्मिश्र या सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ सासाधन दूसरे गुण स्थान का नाम है। तेजल यह वनस्पति काय को क्यों छोड़ा है? छोड़ दिया। हाँ वो अनंत है, ये असंख्या संख्या वाले की बात चल रही ख्याल में, क्योंकि पढ़ते तो हम स्ट्राइक होना चाहिए, छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा है। अब यही रुकेंगे हम। क्रियाकर्म होता ही नहीं वनस्पति को, कैसे वो नहीं होने वाले जीव लिए, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के समान लिए जिनमें क्रियाकर्म नहीं है, नहीं है। हाँ वनस्पति में नहीं है, पर ये असंख्यात संख्या वाली है और वहाँ अनंत की बात है, ये असंख्यात है ना, देखो। हाँ ऐसा ग्रुप लिया कि जो असंख्यात है। हाँ क्योंकि जो कायिकों के समान है वो काय योगियों में लिया था उन्होंने। अब रुकेंगे हम यहाँ, कल 11वां होगा। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हुरु।
ब्रह्म ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयजनं नमो उज्जनं नमो लोहे सर्वत्र।